ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قائم کی ہے یہاں پر اس باب میں، باب الرجا میں، اللہ سے امید رکھنے کے بارے میں. اور الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں بہت برکت والے دین ہمیں عطا فرمائے ہیں. ان دینوں میں ہمیں اللہ سے خوب استغفار، توبہ، نیک اعمال کرنے چاہیے. یہ دین ویسے بھی ختم ہو رہے ہیں، بہت جلد ابھی عرفہ کا دین بھی آ جائے گا منڈے کو، اور ٹیوزڈے کو عید بھی آ جائے گی. اس لیے ہمیں تو کیا معلوم آئندہ ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائیں، کہ ہم خوب دین کا کام اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں. ان دنوں میں کثرت سے وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجری ولیال عشر. اور اللہ کی ذات جب کسی چیز کی قسم کھاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ خود قسم کھا رہا ان 10 دنوں کی، اور عرفہ کے دین اور عید کے دین کی فجر کی، بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں معلوم تو نہیں ہے، اللہ پاک نے یوں تو فرمایا کہ مجھے ان دنوں کی عبادت اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے، ان دنوں کی عبادت اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ پاک نے ان دنوں میں کتنی برکات، نورانیت اور کتنے نعمتیں رکھی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ اللہ پاک ان دنوں کی عبادت کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں تو اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کر، اور 3را کلمہ 100 مرتبہ ہر لفظ کو پڑھ کر، سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ کر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک، ہم آپ نے ان راتوں میں جو نعمتیں اور جو برکتیں رکھی ہیں، अल्लाह तू ही ज्यादा जानता है, कुछ तो तूने रखा है जिसकी वजह से तूने इन 10 दिनों की कसम खाई है। अल्लाह पाक इन दिनों की नेमतें हमें नसीब फरमा, इन दिनों की बरकतें हमें नसीब फरमा। रोजाना इशा के बाद या मगरिब के बाद 2 रकात या दिन में 2 रकात सलातुल हाजत और सलातुल तोबा 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह मेरी तोबा कबूल फरमा, ए अल्लाह पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा। जाहिर बात है कि हम सलातुल तोबा भी पढ़ेंगे कि अल्लाह बहुत महबूब होगी, इन दिनों की इबादत इतनी महबूब है, तो हम तोबा की 2 रकात पढ़कर 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह को हमारी तोबा भी बहुत महबूब होगी। बहुत मुख्तसर काम है, ईशा की नमाज के बाद 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ने के बाद और वितर पढ़ने के बाद 2 रकात पढ़ लें सलातुत तौबा की नीयत से कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल की गुजर गई, इन जिंदगी में मैंने जितने भी गुनाह किए हैं रात में दिन में खुलकर छुपकर छोटे बड़े अपनों में दोस्तों में जहां कहीं, ए अल्लाह उन तमाम गुनाहों की तू मग़फ़िरत फरमा। और जो तूने नेमतें रखी है इन 10 दिनों की अंदर में, अल्लाह वो नेमतें हमें नसीब फरमा, वो बरकात हमें नसीब फरमा, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के यहां महबूब अमल इतने ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी कबूलियत फरमा कर अल्लाह ताला दोनों जहां में हमारा बेरा पार कर देंगे। इसलिए कभी कभी मौका महल देखकर भी अल्लाह से मांगा जाता है। बाप अगर गुस्से में हो तो बाप से उस वक्त तो कोई मांगे तो देगा नहीं देगा, लेकिन अगर वो माशाल्लाह बहुत ही खुशी के मिजाज में है उस वक्त तो बाप से अगर मांग ले तो वो खुशी से दे देता है। अल्लाह के यहां तो हर वक्त रजा है, गुस्सा नहीं है। समझ में आई बात? अल्लाह ताला तो हमारी तरह गुस्से से पाक है, हमारी तरह नहीं कि वो थोड़ी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। अगर अल्लाह छोटी छोटी बात पर गुस्सा होता तो दुनिया चलती नहीं है। समझ में आई बात? अल्लाह तो हलीम है, बुर्दबार है, बुर्दबार है, माफ करता रहता है, कितनों को माफ कर देता है। तो वयाफू अल कसीर का जिक्र है, अल्लाह तो बहुत सो को तो माफी कर देता है, वैसे ही माफ कर देता है। ऐसे वक्त में जब अल्लाह ताला खुद कसमें खाता है, जमहूर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन 10 रातों की कसमें खाई है वलयाल अशर, जाहिरी बात है कि इन 10 रातों में बड़ी बरकतें होगी, इसकी इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है, तभी तो कसम खाई है। इसलिए हमें चाहिए कि इन दिनों में सलातुत तौबा या इसी तरह इस्तिगफार या इसी तरीके से सलातुत तहज्जुद पढ़कर हमें अल्लाह से दुआ करनी है ताकि हमें लैलतुल कदर का सवाब भी मिल जाए। रमजान में एक लैलतुल कदर मिले तो 80 साल के बराबर है, वो कितने महीने हो जाते, 1000 महीनों से ज्यादा है। और यहाँ तो हर रात लैलतुल कदर है, हर रात लैलतुल कदर है। अगर 9-10 रातें हमें मिल गई लैलतुल कदर की तो जिंदगी में कितना सवाब मिलेगा। इसीलिए मैंने उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारी इस कंट्री में बहुत आसान है कि फजर का ईशा की नमाज 11 बजे होती है और फजर की नमाज का 18 डिग्री के हिसाब से और 15 डिग्री वाले, तो एक तो पढ़ते 1:30 को उनका टाइम शुरू हो जाता है, 1:20 1:15 को और गालिबन, और दूसरा तो 4 बजे है, वो तो एहतियात वाला है, वो तो एहतियात वाला है। तो जब टाइम ही फजर का शुरू हो गया 1:30 को, तो हम ईशा की नमाज और 1 बजे के दरमियान में टाइम कितना रहता है, 2 घंटे 12 और 1, तो हम ईशा के बाद ही बैठकर ईशा के बाद ही आधा घंटा पौन घंटा हम बैठ जाए, पहले तहज्जुद पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ने वितर पढ़े और वितर पढ़ने के बाद यासीन शरीफ पढ़ ले और सूरतुल वाकिया पढ़ ले बरकत के लिए, और सूरह तबारक पढ़ ले, सूरह हामिम सजदा पढ़ ले कब्र के अजाब से बचने के लिए, और फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़ ले, और 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, और 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। आधा घंटा लगेगा, इस आधे घंटे में हमें एक रात में 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है, क्योंकि फिर तो फजर का टाइम शुरू हो जाता है, फिर सो जाए फजर के लिए उठ जाए आधा घंटा। वैसे भी हमें सोते सोते तो 12:30 तो बज ही जाते हैं, नमाज पढ़कर जब जाते हैं जी, तो हम यही वक्त में इसकी कदर कर लें, इसकी क्या कर लें, हम कदर कर लें। कदर नहीं करेंगे तो क्या मालूम आइंदा में मिला कि नहीं मिला। अल्लाह जब किसी चीज की कदर नहीं करते, बंदे जब किसी चीज की कदर नहीं करते हैं तो अल्लाह फिर उसको मौका नहीं देता है। ये मेहमान है, ये 10 दिन हमारे पास क्या है, मेहमान है, और मेहमान को हम वेलकम करते हैं तो दूसरी बार ज्यादा यानी वो अच्छी तरह आता है। पहली बार ही हमने उसको ढुटकार दिया तो फिर कभी आने वाला नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें मेहमानी के तौर पर ये दिन दिए हैं कि ताकि हम कुछ नेकी के अमाल कर लें, अपनी मगफिरत के लिए दुआएं कर लें, तौबा कर लें। इंसान अगर कदर न करे तो फिर उसके लिए तो फिर नाकदरी की वजह से आइंदा मिला ना मिला कुछ पता नहीं है। इसीलिए अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में, उनकी किताब का नाम है अल ईमान, अल ईमानुल औसत, ईमानुल औसत है, इस किताब में 10 असबाब लिखे हैं, 10 सबब हैं जिनके जरिए से अल्लाह गुनाह को माफ कर देता है। इन दिनों में उनमें से जितने हो सके हम कर लें, थोड़े थोड़े कर लें। फरमाया उसमें सबसे पहला सबक तो आमतौर पर हम सुनते रहते हैं तौबा, कि आदमी सलात तौबा पढ़ ले, तौबा की नियत से सलात तौबा पढ़ ले, तो उसकी वजह से क्या होगा। अल्लाह कहते हैं कि पिछले सारे गुनाह जो है 40 साल 50 साल के, अल्लाह तबारक व ताला अगर सच्चे दिल से तौबा की है तो उलाई के युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, वो सारे गुनाह को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। जितने भी गुनाह किए क्या बन जाएंगे, नेकी बन जाएगी। हमने जो नेकी की नहीं, तौबा ही करने से हम 2 रकात सलात तौबा पढ़ ले, सलात तौबा का तो जिक्र हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको बतलाया है। सलातुल हाजर भी बतलाई, सलात तौबा भी बतलाई है, सलात तौबा पढ़ ले। सलात तौबा के लिए कि आदमी को अल्लाह की तारीफ करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 2 रकात तौबा की पढ़ने के बाद, और फिर अपने दिल से 3 बार कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे। दिमाग भी जहन भी दुनिया के वसवसों से खाली हो, सच्चे दिल से कह दे अल्लाह मुझे पता है कि मैंने ये 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 किया है, जितना भी याद हो, और बहुत से तो मुझे याद ही नहीं है अल्लाह पाक बोल गया, ए अल्लाह मेरी जिंदगी गुनाह को माफ कर दे। 3 बार बोल दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम को 3 बार, हर दुआ में देखो 3 बार या 7 बार, ताकि वो बात क्या है बैठ जाए, अल्लाह से खुलूस दिल के साथ अल्लाह की तारीफ करें। सूरह फातिहा पूरी पढ़ ले, तारीफ नहीं आती है तो वो तारीफ ही है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, और उसके बाद 3 बार अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या फिर 3 बार कह दे अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर, अब नहीं करूँगा, वादा कर ले अल्लाह से, फिर हो जाए तौबा कर ले, लेकिन वादा कर ले अल्लाह से अब नहीं करूँगा, जो कुछ किया है उस पर मुझे माफ़ कर दे, मैं नादिम हूँ, बस दुरूद शरीफ पढ़ कर बात ख़त्म हो। ये तौबा के तो उससे क्या होगा, अगर सच्चे दिल से आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो अल्लाह के यहाँ तो कबूलियत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, इन मुबारक दिनों में तो कबूल हो ही जाता। ऐसा थोड़ा है कि अल्लाह इन दिनों को मुबारक बतलाएं और इनके अमाल को मुबारक बतलाएं और हम करें और अल्लाह कबूल ना करें। इसलिए हदीस में आता है अत्ताइब मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने जिंदगी भर गुनाह किया ही नहीं। खास इब्न माजा की रिवायत थी, किया ही नहीं कुछ। और नंबर 3 तौबा करने पर अल्लाह कामयाबी अता फरमा देते, तौबू इलल्लाहि जमीअ, सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, अय्युल मुमिनून ओ ईमान वालों, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी के लिए तो सबसे बड़ी चीज अल्लाह ने हमें बताई है। इसलिए तो कामयाबी किसको कहते हैं, जिसके बाद कोई गम ना हो, जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। इसलिए फलाह कामयाबी तौबा के बाद मिलती है। तो हम रोजाना तौबा कर लें, दो रकात पढ़ लें और अस्तगफिरुल्लाह कर लें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कि शैतान हर वक्त हमारे सामने गुनाहों को पेश करता रहता है, कभी गिबत की शक्ल में, कभी बदगुमानी की शक्ल में, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या। इसलिए हम रोजाना अल्लाह से माफी मांगे। इसीलिए तौबा कहते हैं तंजीउल कल्ब अनिदम, दिल को गुनाह की नीयत से पाक करना, दिल को बस ए अल्लाह अब तौबा नहीं करूंगा, अब गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह से कह दे। लेकिन ऐसी तौबा ना करे कि तौबा बर लब सबा बरदम, दिल मुर्द लुत्फे गुना। जबान से तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हाथ में तस्बीह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जबान पर तौबा, हाथ में तस्बीह और दिल में गुनाह की नफरत और लज्जत मौजूद है। दिल के अंदर में गुनाह से नफरत है, गुनाह से क्या है, गुनाह की लज्जत है, गुनाह करूंगा। तो ऐसी तौबा पर तो गुनाह को भी हंसी आती है कि दिल के अंदर में तो भी है कि मैं गुनाह करूंगा, जबान से तो कह रहा है लेकिन दिल में से निकाल, दिल को गुनाह की नीयत से पाक करना। तौबा नाम किसका है, दिल को गुनाह की नीयत से पाक करना, इसका नाम है तौबा। इसलिए सबसे पहले यह काम करना है, नंबर वन। नंबर दो, कसरत इस्तिगफार, 100 बार रोजाना हम क्या करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मग़फिरली अल्लाह मग़फिरली अल्लाह मग़फिरली, जो भी इस्तिगफार याद हो। क्यों, अगर इसकी दुनिया में भी मग़फिरत नहीं हुई तो भी अलजामुल कबीर की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, कयामत के दिन जिस बंदे के नाम आमाल में अस्तगफिरुल्लाह 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 के अल्फाज जितने ज्यादा होंगे इस बंदे को मुबारक हो कि कयामत के दिन उसको इतनी खुशी होगी इतनी किसी को नहीं होगी। चलो दुनिया में नहीं हुई तो कयामत के दिन तो होने वाली है, अल्लाह माफी कर दे। इसलिए कम से कम 100 बार सुबह में, 100 बार शाम में, खुसूसन इन दिनों में, ताकि पिछले गुनाह ही माफ हो जाए, नई जिंदगी शुरू होगी। ये हज के महीने, ये तो बहुत ही कीमती महीने, कीमती महीना है, ये तो बहुत ही कीमती डेज है। तो इस्तिगफार की कसरत करें, सुबह शाम इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ ले। और नंबर दूसरे पर इस्तिगफार के साथ साथ अगर कोई बंदा हर वक्त ये नहीं कह सकता अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, सैयदुल इस्तिगफार नहीं कर सकता है तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो करता ही रहे। क्यों, अल्लाह पाक ने इस्तगफिरुल्लाह में दुनिया कबर आखिरत की कामयाबी रखी है। इस्तगफिरु रब्बकुम, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कौम को इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, वो माफ कर देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, क्या करेगा, इस्तगफार की वजह से बारिश भी उतरेगी। वयुमदिरकुम बिअमवाल, इस्तगफार की वजह से बंदे को अल्लाह माल ज्यादा देगा, माल में बरकत होगी। वह बनीन, और बेटों के जरिए से कि जिनके घर औलाद नहीं, अल्लाह उनका औलाद देगा। वह जाल लखुम जन्नातिन, और अल्लाह तबारक व तआला इस्तिगफार के जरिए से तुम्हारे बागात में नहर का पानी लाएगा, नहर अता फरमाएंगे पानी। वयजाल लकुम अनहारा, और पीने के लिए मीठा मीठा पानी अल्लाह देगा। एक इस्तिगफार पर अल्लाह पाक कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो चलते फिरते हम अस्तगफिरुल्लाह कर देंगे तो इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया ये इस्तिगफार बना देंगे। वुजू के बाद भी इस्तिगफार, आदमी हर इबादत के बाद इस्तिगफार। एक आदमी वुजू करता है तो वुजू से गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाता है। हदीस पाक में आते हैं जो आंखों से गुनाह किए वो तो वुजू करते ही आंखों से धुल गए, कुल्ली की तो मुंह से धुल गए, जबान के धुल गए, तो हाथ से जो गुनाह किए हाथ धोते ही, इसी तरीके से पैर धोएंगे तो पैर से, दिमाग में सोचा तो मसा से। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इस्तिगफार का हुक्म दिया। जी कौन सी दुआ है वो, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये बहुत अजीब दुआ है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तीन जुमले, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। उससे क्या होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके इस जुमले को सील कर देगा और कयामत के दिन खोला जाएगा और फिर अल्लाह जितना चाहेगा उसको सवाब दे देंगे। वुजू के बाद देख, सुभानक अल्लाह बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नमाज के बाद देखो, नमाज से ही गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अल्लाहु अकबर कहते थे हर नमाज के बाद और तीन बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम नहीं करते, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इतना करने से भी तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी, इतना करने से। तो नमाज खुद गुनाहों को माफ करने वाली है, फिर भी नमाज के बाद इस्तिगफार का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, राजी हो जा और हमारी नमाज कबूल कर। तहज्जुद में इस्तिगफार है, तहज्जुद के बाद भी अगर तहज्जुद की नमाज खुद ऐसी है कि उससे हजारों गुना माफ हो जाते हैं, अल्लाह बहुत राजी हो जाता है, लेकिन फिर भी कुरान मजीद में क्या है, कानू कलीलम मिन अल्लैल मा यहजऊन वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून। ये सहाबा किराम सारी रात इबादात में गुजार देते हैं और सहरी के वक्त अल्लाह के सामने इस्तिगफार करते हैं तहज्जुद के बाद। तहज्जुद पढ़ने के बाद भी, इतनी लंबी इबादत करने के बाद भी इस्तिगफार कर, मालूम होता है सारा चीज क्या है, अस्तगफिरुल्लाह 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 हर वक्त पढ़ते रहे, जबान पर हर वक्त क्या हो अस्तगफिरुल्लाह। हज के बाद भी है देखो, हालांकि हज एक ऐसा गुनाह है कि आदमी के कदम कदम के ऊपर, बल्कि मैं कहूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हदीस में है मेरी राइट साइड में, मेरी लेफ्ट साइड में, मेरे आगे और मेरे पीछे जब मैं एहराम बांधकर तस्बीह कहता हूं तो मेरी राइट साइड में जहां जमीन खत्म होती है, कहां खत्म कुछ पता है, इधर जहां जमीन खत्म होती है, इधर जहां जमीन खत्म होती है, पीछे जहां जमीन खत्म होती है, सारे कंकर पत्थर दरख्त फरिश्ते सब मेरे साथ इस्तिगफार पढ़ते हैं, ये तलबिया पढ़ते हैं। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, सही हदीस खुद है। हालांकि क्या फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लैसा लहुल जज़ा इल्ला जन्ना, हज का बदला ही नहीं सिवाय जन्नत के, उसका बदला ही जन्नत है। और एक रिवायत में बुखारी शरीफ में है, रजा कयौमिन वलदत उम्मु, हज पर लेता है उसके गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। हज तो हज कबूल हो जाए तो बंदे की तो फिर पूछना ही क्या जी, फिर भी क्या है, कितने गुनाह, गुनाहों को मिटा देने वाले तीन अमल है, याद रखो, गुनाहों को
माँ के पेट से पैदा हो ऐसा बनना हो तो उसके तीन अमल है।
कौन से?
हदीस में, मुस्लिम शरीफ में है तीनों रिवायत। नंबर एक, जो बंदा इस्लाम कबूल करता है, अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ लिया उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चाहे वो 70-80 साल का बूढ़ा हो, उसके जिंदगी के छोटे बड़े सब गुना माफ हुए, सब सब उसी वक्त। गोया कि ये बिल्कुल प्लेन पेपर है, अब ये आज से गोया जो भी करेगा उसका लिखा जाएगा। एक तो ये अल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला। और नंबर दो, अल हिजरतु तहदिमु मा काना कबला, हिजरत करने वाले जिन्होंने हिजरत की इस्लाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसके सब गुना माफ हो गए। और नंबर तीन, जो हज करने वाला मकबूल हज करता है, अच्छी तरीके से गुनाह से अपने आप को बचाता है, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल हज यहदिमु मन काना कबला, हज की वजह से उसके पिछले सारे गुनाह माफ है। हज और पहला भी गया, दूसरा भी गया, हिजरत तो है नहीं जी, और हम तो मुसलमान हैं, अब रह गया कौन सा? आज का,
आज का।
फिर भी देखो, हज इतना बड़ा अमल है, फिर भी अल्लाह क्या कह रहे हैं कुरान करीम में, सुम्मा फीदु मिन हैस वफाद नास, अरफात से मुजदलिफा में आओ, वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का इस्तगफार करो। इस्तगफार का हर जगह हुक्म है, वुजू के बाद देखो, नमाज के बाद देखो। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इबादत थी, उनको उनके आमाल कितने थे, पूरी पूरी रात। हदीस में आता है, हत्ता यतवर्रमत कदमा, आपके पैर सोलन हो जाते थे, इतनी इबादत करते थे, इब्न माजा की रिवायत है। लेकिन हज्जतुल वदा के मौके पर आपने साहबा से पूछा, क्या मैंने अपना दीन का काम, तबलीग का काम पूरा कर दिया? 124,000 साहबे किराम ने क्या फरमाया? अदैतल अमाना, आपने अल्लाह की अमानत को हमें पहुंचा दिया, उम्मत को सही नसीहत कर दी, हक अदा कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली उठाई ऐसे आसमान की तरफ, अरफात में, वो आखिरी हज था ना, ऐसे, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू इन लोगों की बात पर गवाह रहना कि मैंने सबको दीन की दावत पहुंचा दी है। देखा, इतनी कामिल जिंदगी, जिन्होंने अपना हक अदा कर दिया, जब वो लौट कर वापस आते हैं घर पर, कहां आते हैं भाई? घर पर आते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, क्या नहीं किया अल्लाह के नबी ने, सब कुछ किया है ना, गुना कोई गुना नहीं, सब इबादत है, कैसे कैसे काम किए, फिर भी अल्लाह कह रहे हैं, इज़ा जा नसुल्लाहि वल फतह वराईतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह, किसको कह रहे हैं लपक, नबी को कह रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, वस्तगफिरु और इस्तगफार करो। नबी को भी हुक्म दे रहे, मालूम होते हैं सबसे बड़ा कलमा कौन सा है, कामयाब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी कयामत के दिन जिसके नाम अमाल में इस्तिगफार का लफ्ज बहुत ज्यादा होगा, वो कामयाब है। नहीं बात, तो ये दूसरा सबब हो गया, एक तो तौबा है, नंबर दो इस्तिगफार। इन दिनों में कसरत से इस्तिगफार करें, यह महबूब अमाल है, इसमें अल्लाह कबूल कर ही लेगा। दो रकात सलात तौबा पढ़कर हम 100 बार इस्तगफारुल्लाह करें, फिर अल्लाह से माफी मांगे। तीसरा अमल जिससे गुनाह माफ हो जाते हैं वो है कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, हसनात नेक आमाल गुनाहों को मिटा देते हैं, इसलिए हमें चाहिए जितना हो सके नेकी कर ले। कोई भी आमाल कोई भी गुनाह हमसे हो जाए उसके फौरन बाद नेकी का काम कर ले तो वो नेकी जो है उस गुनाह को क्या कर देगी, मिटा देगी। नेकियां ज्यादा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बहुत बड़ा सवाब, जैसे मैंने वो हदीस सुनाई थी कि नेकियां ज्यादा करें, दौड़ दौड़ कर नेकियां करें। दस्तूर यही है कि उधार की कोई चीज होती है उससे थोड़े से वक्त में ज्यादा काम लेते आदमी, जिसे आप बोरो करो ना, आप बाजू वाले से एक आइन बोरो कर लो, भाई आइन हमारी खत्म हो गई है, टूट गई है, चलो एक दो तीन घंटे के लिए दे दो, तो आप क्या करेंगे, एक जोड़ी करेंगे, मॉले लूचे खरीद ले ली, मिला हुआ है करी लो ना, मरेलू चेक खरीद लियो नहीं, बोले एक बार नहीं सारे ही कर लो, कितना सारे ही कपड़े कर लो, है ना, एक जोड़ी नहीं सारे ही कर लो। ये तो हमारी आदत होती है, हम इसको जानते हैं, तो अब तो खरीदेंगे नहीं, तो अपने बहन के अपने पड़ोसी के घर से मंगवा ले तो क्या करेंगे, बस तो दो चार दिन के कपड़े एक साथ ही निकाल लेंगे हफ्ते तक के। अरे भाई एक दफा मांगा है, बार बार चीज तो मांगी नहीं जाती, आज मांगा फिर दो, तो क्या कहेंगे इसके सही बेकारी है क्या, तो हम क्या करते हैं एक ही बार में सब सफाया कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे उलमा कहते हैं ये जिस्म हमारे पास उधार है, जैसे भाई उधार का माल है ये, तो हमारा नहीं है, अल्लाह से हमने बोरो किया है, अल्लाह से हमने क्या है, ये हमारी मिलक नहीं है, हमारी मिल्कियत नहीं है, ये आंखें ये कान हमारी मिल्कियत नहीं है। अभी मैं मिसाल देता हूं ऐसी ताकि बहुत जल्दी समझ में आ जाए, समझ में बात कि अल्लाह की मिल्कियत है ये, किसकी भाई, मालिक यौमिद्दीन, दुनिया में उधार दिया है, कयामत के दिन अल्लाह मालिक है, समझ भाई, अगर हम मालिक होते तो हम मौत ही नहीं आती, मौत ही नहीं आती। अल्लाह ने जिंदगी के कुछ अय्याम हमें अता फरमाए, कभी रमजान दे दिया, कभी जिलहिज्जा दे दिया, कभी कुर्बानी के दिन दे दिए, कभी मुहर्रम के दिन दे दिए, कभी क्या कभी क्या, और हमें अल्लाह पाक ने 40 साल दे दिए, 50 साल दे दिए। ये किराए का मकान होता है, आप यूं समझिए किराए का जिस्म है जी, वो मकान हमारा नहीं होता है, वो तो एक दिन हमें दे देना पड़ेगा, वो तो किसी मालिक का मकान है, हम तो उसमें रहते हैं तो हम उसकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आई बात, तो किराया तो भरना पड़ेगा, तो अल्लाह का ये किराया है हम पर दिया गया, हमें इसका किराया भरना है, कहीं आंखों से, कहीं जबान से, कहीं कान से, कहीं हाथों से, कहीं पैरों से। किराए की गाड़ी चलाते हुए भी क्या करते हैं, ज्यादा काम निकाल लेते हैं, भाई शाम को गाड़ी वापस करनी है ना, चलो भाई ज्यादा कस्टमर लेके घूमो ताकि पैसे ज्यादा आ जाए। तो किराए के जिस्म से जितनी ज्यादा नेकियां हो सके इंसान से, और खुसूसन उन दिनों में जिन दिनों में अल्लाह के यहां आमाल महबूब है, जिसके यहां जिस अल्लाह ने जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है ये बात सच्ची है, उसमें कोई झूठ नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तिर्मिजी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि इसकी हर रात लैलतुल कदर है। हाँ मरने के बाद फिर आराम मिल जाएगा, लेकिन अभी तो जितना हो सके चलते फिरते उड़ते बैठते। मेरी माए और बहने, बहुत सारी हमारी वो माए और बहने जो जिनके दिन पाक नहीं होते हैं, तो वो गोया क्या है अपने आप को बस आराम ही समझते, नमाज माफ है, चलो इन दिनों में नमाज नहीं लेकिन तस्बीह पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इस्तग़फार पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। इन दिनों में अल्लाह को तीसरा कलमा ज्यादा महबूब है, तो हम और दिनों में हम 33 बार पढ़ते हैं, इन दिनों में हमें तो 100, 500, 1000 बार सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? एक सुभान अल्लाह जमीन से लेकर आसमान तक के ये खले को भर देता है, एक सुभान अल्लाह बहुत पहाड़ के बराबर है। अगर मैंने 1000 बार सुभान अल्लाह रोजाना पढ़ दिया, 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, मैंने 1000 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया, मैंने 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मैंने 1000 बार दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, मैंने 1000 बार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह कर लिया, तो अल्लाह के क्या मिलने वाला है इंसान अंदाजा नहीं कर सकता। इसलिए इन दिनों के सारी नेकियां अल्लाह को बहुत महबूब है, बहुत महबूब है, इसलिए कसरत से इन दिनों में अल्लाह से इबादत करें। जब اپنے کرائے کے جسم کو، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس کے ہر عضو کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ راضی ہوگا. تو پھر قبر میں کہا جائے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو بہت محنت کر کے آیا ہے، بہت محنت کر کے آیا ہے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جا، دلہا کی طرح کیوں نہیں کہا، دلہن کی طرح کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلہن کی طرح قبر میں سو جا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میٹھی نیند سو جا، دلہن کا لفظ کیوں لائے؟ وہ دلہن تو ہے نہیں، وہ تو دلہا ہے، مرد ہے. پھر ہر ایک کو کہا جائے گا، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی جو نیک ہوں گے، نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، اتنا کہہ سکتے تھے، آرام کی نیند سو جا، پرسکون نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا، مگر یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جا؟ حدیث میں دلہن کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ نومت العروس، اس لیے کہ عام طور پر دستور یہ ہے کہ دلہن کی رخصتی ہو، پہلی رات اگر بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جائے خاوند کے انتظار میں، تو دلہن جب سوتی ہے اس کو کون جگاتا ہے؟ دلہا جگاتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، یعنی محبوب کے علاوہ، خاوند کے علاوہ اس لڑکی کو کوئی جگائے گا نہیں، گھر میں کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کوئی جگائے، کون ہے وہ؟ صرف اگر کوئی جگائے گا تو اس کا شوہر جگائے گا اس رات میں. دلہن کی آنکھ جب پڑی تو خاوند کے چہرے پر پڑی، جب یہ اٹھی نا تو پہلے، مومن آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کی پہلی نگاہ اللہ پر پڑے گی. کس پر؟ جیسے قبر میں سونے والے کی، جیسے گھر میں وہ شادی شدہ آدمی جب سو جاتی ہے لڑکی، اس کی نگاہ سوائے خاوند کی اور کسی پر نہیں، اس کے روم میں، اسی طرح جب یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ کس پر نگاہ اس کی جائے گی؟ پہلے اللہ پر. مومن کی آنکھ کھلے گی، اس کو سب سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہا دلہن کی نیند سو جا. الحسنات الماہیہ، نیک کام زیادہ کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ تیسری ہو گئی، توبہ، استغفار اور نیک اعمال، خصوصاً ان دنوں میں. چوتھی بات ختم کر دیتا ہوں، چوتھی بات، مومن کی دعا مومن کے لیے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا الا شفاه الله. صحیح مسلم. جو مسلمان آدمی انتقال کر جائیں، اس کے جنازے میں 40 آدمی نماز کے لیے آ جائیں، تو اللہ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے، اس 40 آدمی کے نماز پڑھنے کی وجہ سے. اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 40 ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، تو نماز جنازے میں 40 بندے بھی اگر شریک ہو جائیں تو توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے دوست کی دعا اس کی پیٹھ پیچھے، دوست ہو یا مسلمان ہو، اس کے پیر پیچھے. ہم یہاں پر ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے بھائی نہیں، ہمارے ماں باپ نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں، ہمارے دنیا کے مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اللہ سارے مسلمان کی مغفرت فرما. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. یہ سب کے لیے کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. بہرحال دعاؤں میں کمی نہیں کرنی چاہیے. تو کون سی دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور سارے انسانوں کی مغفرت فرما. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تنسانا من دعائک، ہم کو نہیں بھولنا تمہاری دعا میں. اللہ کے نبی کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو نا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کریں. سب سے بڑی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب اس کے بعد آگے ہیں ایک اور, مرنے کے لیے, مرنے والے کے لیے نیکی کرنا, انتقال کر کے اس کے لیے قربانی کرنا, اس کے لیے دو رکعت صلاۃ الحاجت, دو رکعت نفل پڑھ کر ثواب بھیجنا, قرآن یاسین شریف پڑھ کر بھیجنا, اور اس کے بعد جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکل اگر کسی پر آ گئی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ کل 10 اسباب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں انسان کے سارے گناہوں کو, جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کے سارے اعمال اللہ پاک کیا کرے, قبول فرما لیں, اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے, نجات کا ذریعہ بنائے. آج کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ جو بھی ایمان والا کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور کہاں بھیجیں گے, جنت میں بھیجیں گے. اگر اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما. یا رب یا رب یا رب یا رحمان یا رحمان یا رحیم, لك الحمد ولك الشكر, لك الحمد ولك الشكر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر کرم فرما, یا اللہ ہماری مغفرت فرما, یا اللہ ہماری اعلی اولاد کی, اللہ العالمین ہمارے اہل و عیال کی, رشتہ داروں کی, اے اللہ العالمین ماں باپ کی اللہ مغفرت فرما, اے اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما, متعلقین اے اللہ احسان کرنے والے سب کی مغفرت فرما, ہم سے محبت رکھنے والے اللہ ان کی مغفرت فرما, علماء صلحاء اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کی, الہ العالمین جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ریسیور کے ذریعے, مکسر کے ذریعے, سب کی پوری امت کی اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین ان دنوں میں جتنے بھی نیکی کے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تیری توفیق سے کرتے ہیں, اللہ تو اپنی توفیق سے اس کو قبول بھی فرما لے, تو اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے. یا اللہ بہت مبارک دین ہے اللہ, اس کی قدر دان ہمیں بنا دے, اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما. یہ دین ختم ہو جائیں گے اللہ, یہ دین ختم ہو جائیں گے, آئندہ ملے نہ ملے, اے اللہ دیکھو نا, 2 سال سے لوگ حج میں نہیں جا سکتے, عمرہ میں نہیں جا سکتے, کیا ہونے والا ہے, اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے. اے اللہ جو بھی نیکیاں ہم کریں ہمیں ماں اللہ قبول فرما لے, اور گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم توبہ کرتے, اللہ توبہ کرتے, اللہ ہم توبہ کرتے, آئندہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ آئندہ نہیں کریں گے, اللہ آئندہ نہیں کریں گے. اللہ العالمین تو ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا, قرۃ عین بنا, اور اللہ ہماری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں میں نسلوں میں اتقیہ اولیاء پیدا فرما, اللہ علماء صلحاء پیدا فرما. اللہ العالمین اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما, اولاد صالح نصیب فرما, اولاد والے ان کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ جن کی اولاد بے جور صالح جور نصیب فرما, جور والوں میں محبت مودت نصیب فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرما, اللہ درس کو قبول فرما, دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم.